पाठ छः, बृहत अथवा महापाषाणिक संस्कृतियाँ, मेगालिथ कल्चर्स। ध्यान दें, नवपाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे बृहत अथवा महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। बृहत पाषाण को अंग्रेजी में मेगालिथ कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के दो शब्दों मेगास तथा लिथास से मिलकर बना है। मेगास का बृहत या बड़ा तथा लिथास का अर्थ पत्थर होता है। इस प्रकार हिंदी में इसे बृहत पाषाण अथवा महापाषाण कहा जाता है। दक्षिण के आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के विभिन्न पुरास्थलों जैसे ब्रह्मगिरि, मास्की, पदुकट्टई, चिंगलपट्टू, सानूर आदि से बृहत पाषाणिक समाधियों के अवशेष मिले हैं। इनका विस्तार तमिलनाडु के तिरुनेवेल्ली जिले में स्थित आदिचनल्लूर से लेकर उत्तर में महाराष्ट्र के नागपुर तक मिलता है। महाराष्ट्र में पाए जाने वाले महापाषाण अधिक प्राचीन लगते हैं। कर्नाटक, आंध्र की ग्रेनाइट चट्टानों वाले प्रदेश में पाए जाने वाले बृहत पाषाण लौहयुगीन हैं। यद्यपि इस संस्कृति के लोग प्रायः द्वीप के समूचे ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तथापि पूर्वी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में इनका जमाव अधिक दिखाई देता है। आवास तथा शवों को दफनाने के लिए वे अधिकांशतः पहाड़ियों की ढलानों पर आश्रित थे। महापाषाणिक संस्कृति हमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग में प्रवेश कराती है। समाधियों के प्रकार, आकार, प्रकार तथा बनावट में भिन्नता के आधार पर विद्वानों ने समाधियों को 40 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है। इनमें कुछ प्रमुख हैं, डोलमेन सिस्ट या डोलमेन समाधि। डोलमेन का अर्थ होता है पत्थर की मेज। इन्हें समतल जमीन पर सीधे अनगढ़े शिला फलकों की सहायता से तैयार किया जाता था। एक या अधिक सीधी शिला फलकों, जिन्हें आर्थोस्टेट कहा जाता था, की सहायता से आयताकार कक्ष का निर्माण होता था, जो पूर्व पश्चिम की ओर लंबाई में रखे जाते थे। समाधि की फर्श पर पत्थर की एक बड़ी पटिया बिछा दी जाती थी तथा ऊपर से एक या दो पटियाओं से ढका जाता था। समाधि को कक्षों में विभाजित करने के लिए कभी कभी अन्य पटियाओं का उपयोग किया जाता था। शिला फलकों से निर्मित इस प्रकार के कक्षों का अधिकांश भाग जमीन में गड़ा होता था तथा केवल कुछ भाग ही ऊपर होता था। डॉलमेन जमीन के ऊपर रहता था जबकि ताबूत नीचे बनता था। समाधि की पूर्वी पटिया में एक प्रकार का छिद्र पोर्ट होल होता था जिससे सामग्री डाली जाती रही होगी। समाधियों में मिट्टी की सपाट शव मंजूषा या ताबूत जमीन की सतह पर रखी हुई मिलती है, साथ साथ काले काले मृदभांड एवं लौह उपकरण भी मिलते हैं। डॉलमेन ताबूत ब्रह्मगिरि तथा चिंगलपट्टू से मिलती है। दूसरा, संगोरा समाज या क्रैनबलियर। इन्हें तमिल भाषा में निडई कलतड्डी कहा जाता है। इस प्रकार की समाधियों के निर्माण के लिए पहले जमीन में एक गड्ढा खोदा जाता था। उसकी फर्श पर अस्थि अवशेष, उपकरण एवं मृदभांड आदि रखकर उसे भर दिया जाता था। तत्पश्चात उसके चारों ओर पत्थर के टुकड़ों, रबल्स से ऊंचाई तक इस प्रकार ढका जाता था कि उसका आकार समाधि जैसा हो। कुछ समाधियों में मिट्टी की सपाद शव मंजूषा ताबूत भी मिलती है। इस प्रकार के स्मारक तमिलनाडु के चिंगलपट्टू जिले में मिलते हैं। छाता प्रकार या अम्ब्रेला स्टोन या हुड स्टोन। इस प्रकार की महापाषाणिक समाधियों के शीर्ष भाग खुले हुए छाते तथा सर्प के फन की भांति दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत के लोग इन्हें क्रमशः टोपिकल्लू या कुदकल्लू कहते थे। केरल राज्य के कोचीन क्षेत्र से शीर्ष प्रस्तर स्मारक पाए गए हैं। इस क्षेत्र के एक अन्य स्मारक को नडुकल अथवा मेनहीर कहा जाता है। ये ग्रेनाइट पत्थर के हैं जिन्हें एक ही पत्थर से एकास्मक या मोनोलिथिक तैयार किया गया है। इनकी लंबाई 1.5 से 2.5 मीटर तक है, जिन्हें समाधियों के समीप उत्तर दक्षिण दिशा में लंबवत गाड़ा गया है। लेटराइट मैदानों में कई स्थानों पर इनके नीचे मृतक भांड भी मिलते हैं। कोमल परथल नामक स्थान पर नडुकलों की एक पंक्ति मिलती है जिसमें कई प्रकार के नडुकल हैं। सबसे बड़ा 13.5 फुट लंबे 7.5 फुट चौड़े आधार पर तथा 1 फुट शीर्ष पर चौड़े पत्थर का बना है। केरल के कोचीन जिले के कट्टम्पल तथा त्रिपुर के पोरकलम से गुफा समाधियां तड़ी गुफा मिलती हैं जिनमें लौह उपकरण एवं मृदभांड पाए गए हैं। इस कारण इन स्मारकों की गणना भी महापाषाण में की जाती है। इन्हें बनाने के लिए पहले चट्टान में सीढ़ी नुमा एक आयताकार गड्ढा खोदा जाता था। खड़ी दीवार में एक प्रवेश द्वार खोदा जाता था तथा इसी मार्ग से पूरी गुफा का स्वरूप तैयार होता था। अधिकांशतः गुफा की फर्श गोलाकार तथा छत गुंबदाकार मिलती है। बीच में आयताकार, गोलाकार अथवा वर्गाकार खंभा भी गड़ा हुआ मिलता है। कुछ गुफाओं में कई कक्ष भी बनवाए जाते थे। चेंगलपट्टू से एक अन्य प्रकार का स्मारक भी पाया गया है जिसे अंत्येष्टिकलर या अर्नबलियल कहा गया है। भूमि के ऊपर मिट्टी के टीले के नीचे लंबा अंडाकार मृतक भांड अथवा पकी मिट्टी का सपाट तबूत गड़ा हुआ मिलता है। कहीं कहीं इनमें लौह उपकरण एवं मिट्टी के बर्तन भी पाए जाते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत के विभिन्न पुरास्थलों से भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बृहत पाषाणिक स्मारक प्राप्त होते हैं। इन स्मारकों के निर्माताओं के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। उत्तर भारत की बृहत पाषाणिक समाधियाँ 20वीं सदी के 6ठे दशक 1960 ईस्वी तक विद्वानों की धारणा थी कि बृहत पाषाणिक संस्कृति का प्रसार गोदावरी घाटी के दक्षिण में ही था। इसके पूर्व यद्यपि विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर जिले में कनिंगम एवं मसूरिया ने कुछ बृहत पाषाणिक समाधियों की खोज की थी किंतु उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1962 से 1963 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष GR शर्मा के नेतृत्व में विंध्य क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में प्रारंभ किए गए व्यापक अनुसंधान के परिणाम स्वरूप ही वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा बांदा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से इन समाधियों को खोज निकाला गया। वाराणसी मंडल के चकियात में तहसील में स्थित चंद्रप्रभा नदी घाटी के हथिनिया पहाड़ी क्षेत्र में संगोरा प्रकार की समाधियां प्राप्त हुई हैं। इनका प्रसार मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा आदि में मिलता है। ककोरिया, कुटिया, कोलडीहवा, खजुरी, मगहा आदि प्रमुख पुरास्थल हैं जहाँ खुदाई करके इन समाधियों को प्रकाशित किया गया है। ककोरिया पुरास्थल चंदौली पहले वाराणसी जिले में स्थित था के चकिया तहसील में स्थित है। यहाँ 1962 से 1964 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग तत्वाधान में खुदाई करवाई गई। यहाँ से संगोरा प्रकार की 8 तथा शिष्ट प्रकार की 3 समाधियाँ मिलती हैं। एक शिष्ट समाधि संगोरा समाधि के अंदर बनाई गई। संगोरा समाधियों की खुदाई में मानव अस्थियों के साथ साथ काले लाल मृदभांड, लघु पाषाण उपकरण, पशुओं की हड्डियां आदि मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शवों को अन्यत्र विसर्जित करने के बाद अवशिष्ट अस्थियों को ही यहाँ दफनाया जाता था। इसी कारण इन समाधियों से प्राप्त कंकाल सुरक्षित दशा में नहीं मिलते हैं। शिष्ट समाधियों का निर्माण लघु पाषाण खंडों से किया गया है। यहाँ दक्षिण की समाधियों की भांति 4 शिलाओं को चारों ओर नहीं खड़ा किया जाता था। ताबूत का कुछ भाग जमीन के ऊपर निकला हुआ रहता था। काकोरिया की समाधियों से लौह उपकरण नहीं मिलते। इस आधार पर विद्वान इन्हें ताम्रपाषाण काल से संबंधित करते हैं। इस क्षेत्र का दूसरा पूरा स्थल कोटिया चकिया तहसील में ही बेलन नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन में संगोरा तथा शिष्ट प्रकार की समाधियाँ मिलती हैं। इनकी एक खास विशेषता यह है कि कि इनमें काले लाल भांडों के साथ साथ लौह उपकरण भी मिले हैं। इनमें दराती, वसूला, भाणागर आदि सम्मिलित हैं। मानव अस्थियां नहीं मिलती, किंतु गाय, बैल आदि पशुओं की अस्थियां मिलती हैं। शर्मा के अनुसार इन स्थलों से जो भौतिक संस्कृति दिखाई देती है वह ताम्र पाषाणिक लोगों की ही है। एक समाधान कि रेडियो कार्बन तिथि ईसा पूर्व तीसरी सती की प्राप्त होती है। बृहत पाषाणिक संस्कृतियाँ ककोरिया, कोटिया समेत विंध्य क्षेत्र के एक बड़े भूभाग में फैली हुई थी। ककोरिया समाधियों से NBP मृदभांड के ठीकरे नहीं मिलते। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में NBP स्तर के प्रारंभ होने तक लगभग ईसा पूर्व छठी शताब्दी बृहत पाषाणिक संस्कृति का अंत हो गया था। बृहत पाषाणिक संस्कृतियों का विस्तार इस महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी मिलता है। नागपुर विश्वविद्यालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से किए गए उत्खनन एवं अन्वेषण के परिणाम स्वरूप विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र से अनेक पुरास्थलों कौंडिन्यपुर, जूनापाणी, ताकलाघाट, मुरहरझरी, पवनार आदि से संगोरा तथा शिष्ट प्रकार की समाधियां मिली हैं। इनमें शवों के साथ साथ पशुओं की हड्डियां, काले लाल भांड तथा लौह उपकरण आदि रखे गए हैं। इस प्रकार भारत में बृहत पाषाणिक संस्कृतियों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था, और यह नहीं कहा जा सकता कि ये मात्र विंध्य पर्वत के दक्षिण में ही सीमित थे। इन रचनाओं के उद्देश्य अथवा उपयोग के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कह सकना कठिन है। गार्डन चाइल्ड का अनुमान है कि बृहत पाषाण किसी अंधविश्वास संबंधी अनुष्ठानिक अथवा धार्मिक उद्देश्य से बनाए जाते थे। बृहत पाषाणिक समाधियों की सामान्य विशेषताएं। बृहत पाषाणिक संस्कृतियों की कुछ सामान्य विशेषताएं दिखाई देती हैं जो इस प्रकार हैं। प्रायः सभी का निर्माण ऊंचे पहाड़ी स्थलों पर किया गया है। इनके नीचे एक या अधिक तालाब निर्मित पाए गए हैं। इनका कारण संभवतः निर्माण सामग्रियों की सुलभता एवं कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा रहा होगा। इससे यह भी सूचित होता है कि ये स्मारक रहने की बस्ती के समीप ही बनाए जाते थे। इन स्मारकों के निर्माता कृषिकर्म से भली भांति परिचित थे। उनके द्वारा उत्पादित प्रमुख अनाज चावल, जौ, चना, रागी या मड़ुआ आदि थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े आदि उनके पालतू पशु थे। वे लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। समाधियों की खुदाई में विविध प्रकार के लौह उपकरण जैसे तलवार, कटार, त्रिशूल, चपटी कुल्हाड़ियाँ, फावड़े, छेने, बसुली, हंसिया, चाकू, भाला आदि पाए गए हैं। ये कृषि तथा युद्ध दोनों से संबंधित हैं। सभी समाधियों से एक विशिष्ट प्रकार के मृदभांड जिन्हें कृष्ण लोहित अथवा काले और लाल भांड कहा जाता है प्राप्त होते हैं। ये चाक पर बनाए गए हैं। इनके भीतरी तथा मुंह के पास वाला भाग काला तथा शेष लाल है। इन्हें औंधे मुंह आओं में पकाया गया है। घड़े, मटके, कटोरे, थाली आदि प्रमुख बर्तन है। मिट्टी के अतिरिक्त ताम्र तथा कांस्य निर्मित बर्तनों का भी प्रयोग प्रचलित था। प्रायः सभी समाधियों से आंशिक समाधिकरण के उदाहरण मिलते हैं। शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। तत्पश्चात बची हुई अस्थियों को चुनकर समाधि में गाड़ने की प्रथा थी। तिथिक्रम। बृहत पाषाणिक संस्कृति की निश्चित तिथि के विषय में मतभेद है। व्हीलर ने ब्रह्मगिरी के उत्खनन में तीन संस्कृतियों को उद्घाटित किया, जिसमें दूसरी संस्कृति बृहत पाषाण काल की है। यहाँ संगोरा तथा डॉलमेन प्रकार की समाधियाँ मिलती हैं। व्हीलर ने इस संस्कृति की तिथि ईसा पूर्व 200 से 50 ईस्वी के बीच निर्धारित किए जाने का सुझाव दिया है। कोयम्बटूर जिले के सूलर नामक स्थल से एक समाधि में ईसा पूर्व तीसरी तथा दूसरी सती की एक मुद्रा मिली है। इसी जिले के पांडुकुल्ली से रोमन शासक अगस्त की एक रजत मुद्रा जो ईसा पूर्व 27 से 14 तक है मिली है। इनसे सूचित होता है कि ईसा पूर्व 3री सती से लेकर ईस्वी सन की 1ली सती तक इन स्मारकों का निर्माण किया गया। कुछ पुरास्थलों हल्लूर, पय्यमपल्ली आदि से उपलब्ध रेडियो कार्बन तिथियाँ बेहद पाषाणिक संस्कृति के प्रारंभ की तिथि ईसा पूर्व 1000 तक ले जाई जाती है। सांकल्य तथा के आर श्रीवास जैसे पुरातत्वविदों की धारणा है कि संगम साहित्य में समाजीकरण का जो विवरण मिलता है वह बेहद पाषाणिक संस्कृति में प्रचलित प्रथा का ही उल्लेख करता है। संगम साहित्य की तिथि ईस्वी सन की प्रथम 2 शताब्दियों में निर्धारित की जाती है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक बेहद पाषाणिक समाधियों का निर्माण हो रहा था। इस प्रकार विविध स्रोतों के आधार पर हम इस संस्कृति का कालक्रम ईसा पूर्व 1000 से लेकर 1ली शताब्दी ईस्वी तक निर्धारित कर सकते हैं। सुदूर दक्षिण में यह संस्कृति 2री सती ईस्वी तक प्रचलित थी। बृहत पाषाण समाधियों के निर्माताओं की निश्चित पहचान के विषय में मतभेद है। दक्षिण भारत तथा भूमध्य सागर के बृहत पाषाणिक संस्कृतियों में घनिष्ठ समानताओं को देखते हुए कतिपय विद्वान यह प्रस्तावित करते हैं कि दक्षिण भारत में यह संस्कृति पश्चिमी एशिया से ही आई थी। इस प्रथम संपर्क के बाद में घनिष्ठ संबंध का रूप धारण कर लिया जो काफ़ी समय तक चलता रहा। भूमध्य सागरी क्षेत्र में इसकी प्रारंभ तिथि ईसा पूर्व 2री सहस्राब्दि मानी जाती है। इसके विपरीत हेमंडार्स, झुकरमैन आदि कुछ विद्वान आदिचन्नलूर से प्राप्त नरकंकालों के आधार पर दक्षिण की इस संस्कृति का निर्माता द्रविड़ जाति को मानते हैं। व्हीलर का विचार है कि ब्रह्मगिरी में महापाषाणिक संस्कृतियों के निर्माता बाहर से आए थे, वे द्रविड़ भाषा भाषी लोग थे।